उत्तरार्ध, कपिल, देवदत्त, पद्मिनी के आगे की रंग पट्टी हट जाती है। वे तीनों मूर्तिवत खड़े हैं। भागवत, क्या है, क्या है उत्तर? इन तीन अभागों के अधर में लटके जीवन की इस समस्या का आखिर क्या हल है? क्या इनका भाग्य पहेली बनकर रहेगा? ऐसा हुआ तो इस सभा में मौजूद गुणीजनों का अपमान होगा। यह तो उनके गले में प्रश्न चिन्ह लटका कर विदा लेना हुआ, यह उचित नहीं। बहुत प्राचीन काल में एक समय इस पृथ्वी पर सूर्य के समान प्रतापी राजा विक्रमादित्य का राज्य था। उससे जब बेताल ने यही प्रश्न किया तो राजा ने पल भर में इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था। पर राजा का वह उत्तर जो तर्कसंगत और शास्त्रोचित था, क्या हमारे आज के समाज के लिए भी मान्य हो सकता है? गाकर, हम नहीं मानेंगे, मुख के भीतर सुरक्षित नाचती जीभ की किसी भविष्यवाणी को हम नहीं मानेंगे। हम पढ़ेंगे भाग्य लेख उस कपाल पर जिसे विधाता ने अंतड़ियों से अलग कर रखा है। सुलझाएंगे हथेली का वह रहस्य जाल जिसे मस्तिष्क नहीं स्वीकार करता। मापेंगे उन नदियों की छिपी गहराई को जो हमारे दृष्टि से परे गुप्त सरोवर के रूप में बहती है। हाँ, यही उचित होगा। तो हमारे तीन अभागे अपनी समस्या का उत्तर खोजते खोजते एक महान ज्ञानी तपस्वी ऋषि के पास पहुँचे। उनके सामने यह प्रश्न रखा गया तो त्रिकालदर्शी ऋषि ने, शायद उन्हें राजा विक्रमादित्य का उत्तर याद आया हो, यह बताया स्वयं गंभीर स्वर में घोषणा करता हुआ, जिस प्रकार वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार अंगों में मस्तक श्रेष्ठ है, और इसलिए देवदत्त का मस्तिष्क जिसके पास है वही देवदत्त है और वही पद्मिनी का सच्चा स्वामी है। जड़ खड़े तीनों में सहसा चेतना आ जाती है। देवदत्त और पद्मिनी बड़े उत्साह से हो हल्ला मचाते हुए मंच के एक कोने में चले जाते हैं और हताश कपिल मंच के दूसरे कोने में। देवदत्त पद्मिनी को बाहों में समेटते हुए, मेरी प्यारी पद्मिनी, 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 मेरे राजा, मेरे स्वामी। देवदत्त, मेरी नन्ही सी बिजली। पद्मिनी, मेरे जीवन के आलोक। देवदत्त, मेरी हथेली की मल्लिका। पद्मिनी, मेरे गंधर्व, मेरे इंद्र। देवदत्त, मेरी शची। पद्मिनी देवदत्त की भुजाओं पर हाथ फेरती हुई उत्सुकता से, चलो मुझे ले चलो, वहाँ ले चलो जहाँ कोमल मिट्टी बिछी हो, जहाँ घनी हरियाली हिंडोला झूल रही हो। देवदत्त, चलो वहाँ जहाँ वट वृक्ष के चंदोवे ने आकाश को छिपा लिया हो। पद्मिनी, यह विशाल वृक्ष मुझे और कौन सा चंदोवा चाहिए? देवदत्त, मेरी सुकुमार प्रियतमा पद्मिनी, तुम ही मेरा हिंडोला हो। पद्मिनी, मेरा देवदत्त नई देह का आभूषण पहने दूल्हे की तरह आया है। देवदत्त पुरुषोचित हंसी से, दुल्हन के पहनने में ही आभूषण की सार्थकता है। पद्मिनी तत्परता से, चलो अब विराम, ठहरो कपिल के पास जाकर। उदास मत हो कपिल, फिर मिलेंगे, है ना? दबी आवाज में, सुनो, देवदत्त के साथ जाना मेरा धर्म है, पर जा तो रही हूँ तुम्हारी ही देह के संग, इससे तुम्हें संतोष होना चाहिए। देवदत्त के पास जाकर, अच्छा कपिल, चलती हूँ। देवदत्त, फिर मिलेंगे कपिल। दोनों उल्लास के साथ गाते हैं, नाचते, किलकारियां भरते, एक दूसरे से लिपटते चिपटते चले जाते हैं। कपिल यथावत सिर झुकाए चुपचाप खड़ा है, क्षण भर की नीरवता। भागवत, कपिल, कपिल। उत्तर न पाकर कपिल, दुखी मत हो, यह विधना का खेल है, उसे कौन? कपिल चौंक कर, कपिल कौन? मैं क्यों कपिल हूँ? मैं कपिल क्यों हूँ? विवेक से चला जाता है। भागवत, इस प्रकार रास्ते अलग अलग हो गए। कपिल ने जंगल का रास्ता लिया, एक बार जंगल गया तो फिर धर्मपुरी की ओर मुड़ा तक नहीं। धर्मपुरी ही क्यों, किसी भी बस्ती की हवा तक नहीं ली। इधर देवदत्त और पद्मिनी धर्मपुरी गए और दाम्पत्य सुख में पूरी तरह डूब गए। पद्मिनी बैठी है बच्चे के लिए कपड़े सीने का अभिनय। देवदत्त प्रवेश करता है, उसके हाथ में दो बड़ी बड़ी पुतलियां हैं। जिनकी वेशभूषा से पता नहीं लगता कि वे गुड़िया हैं या गुड्डे। पुतलियों का काम छोटे बच्चों से भी लिया जा सकता है। देवदत्त चुपके से आकर पद्मिनी के पीछे खड़ा हो जाता है। देवदत्त, ए पद्मिनी, चौंक कर। ओह, देवदत्त को देखकर, यह क्या खेल करते हो तुम, डरा ही दिया। देखो ना, सुई चुभ गई, उंगली से खून आ रहा है। देवदत्त, सचमुच खून आ गया, लाओ उंगली मेरे मुंह में रख दो, चूस दूं। पद्मिनी, कोई जरूरत नहीं, खुद चूस लूंगी। पुतलियों को देखकर बड़ी बड़ी आंखों से, हाय राम, कितनी सुंदर हैं ये दोनों बुढ़िया, किसकी हैं? देवदत्त, और किसकी, अपनी, घर में नन्हा पाहुन जल्दी ही आने वाला है ना, उसके खेलने के लिए। पद्मिनी, छी, इतनी जल्दी, अभी बहुत दिन पड़े हैं। देवदत्त, होने दो, हर समय थोड़े ही मिलती हैं ऐसी सुंदर गुड़िया, ये उज्जैन के मेले की गुड़िया हैं। पद्मिनी, कितनी प्यारी हैं, अपने पास खींचकर, एकदम जीती जागती, चमकती आंखें, कोमल से गाल, प्यार करती है। अब बैठकर बताओ मेले में क्या क्या हुआ, मुझे तो यहीं छोड़ गए। देवदत्त, इस दशा में मेरा बैरी भी तुम्हें वहां नहीं ले जाता, मैं भी न जाता, पर तुमने बार बार अपनी मनौती की याद दिलाई, इसीलिए चला गया। पर जाना अच्छा ही हुआ, एक बड़ी विचित्र घटना हुई। एक जगह अखाड़े में कामरूप का पहलवान ताल ठोक ठोक कर सबको चुनौती दे रहा था, और उसके आगे कोई टिकता ही न था। पता नहीं एकाएक मुझे क्या सूझा कि अपने को संभालूं, इससे पहले ही कपड़े उतार साथी का दिया हुआ लंगोट पहन अखाड़े में कूद पड़ा। पद्मिनी, गुड़ियों को प्यार करती हुई, सच्ची? देवदत्त, हाँ। पद्मिनी, पर तुमने तो इस जन्म में कभी कुश्ती नहीं लड़ी? देवदत्त, न कुछ सोचा न समझा, बस कुछ भूत था सवार हो गया और तीन चुटकियों में कामरूपी पहलवान को धरती दिखा दी। पद्मिनी हंसते हुए, तुम्हारे पिताजी को पता चला तो ये क्या कहेंगे? देवदत्त, मुझे पहचानने वालों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। पद्मिनी पास आकर बाहों को सहलाते हुए, उस दिन अखाड़े में तलवार चलाने में भी सामने वाले को बुरी तरह हराया था, और आज यह कहानी, आगे बहुत आगे मत बढ़ाना, लोग शक करने लगेंगे। देवदत्त, मैं नंगे बदन खड़ा था तब किसी को शक नहीं हुआ, बल्कि एक मित्र ने पूछा, यह विद्या क्या कपिल से सीखी? पद्मिनी, कपिल नहीं तो सिखाई थी। देवदत्त, सुनो पद्मिनी, मैं समझता था कुश्ती, तैरना, तलवार चलाना, इन सब में सोच विचार की जरूरत पड़ती है, मस्तिष्क से काम लेना पड़ता है, पर यह शरीर तो विचारों की प्रतीक्षा नहीं करता, बस कर बैठता है। पद्मिनी, बेजोड़ शरीर, बेजोड़ मस्तिष्क, बेजोड़ देवदत्त। देवदत्त, पिछले दिनों मैं न जाने कितने लोगों से जूझा होऊंगा, कितनी रातें ठीक से सोए बिना कटी होंगी, पर देखो ना, जरा भी थका नहीं हूँ उछल कर। चलो, गाड़ी खड़ी है, झील की सैर कराएं, जी चाहता है दौड़े कूदें, पहाड़ पर चढ़ें, झील में तैरें। पद्मिनी, पर मैं यह सब कैसे करूंगी इस हालत में? देवदत्त, तुमसे दौड़ने कूदने को किसने कहा? तुम झील के किनारे बैठी रहना और आसपास की छटा देखना, बस अपना बेटा आ जाए तब तुम्हें भी तैरना सिखा दूंगा। पद्मिनी, बेटा बेटा जपा करते हो, बेटे की जगह बेटी आ गई तो? देवदत्त, बेटी तुम्हारे जैसी हुई तो दोनों को तैरना सिखा दूंगा। पद्मिनी हंसकर, तैयार? देवदत्त उसे अपनी ओर खींचता है, अरे अरे, शहर का क्या हुआ? देवदत्त, हाँ हाँ, चलो चलें। पद्मिनी कुछ रुक कर, देवदत्त, देवदत्त, क्या? पद्मिनी, तुम देह पर चंदन का तेल क्यों लगाते हो? देवदत्त, गंध अच्छी लगती है। पद्मिनी, जानती हूँ, लेकिन? देवदत्त, लेकिन क्या? पद्मिनी हिचकती हुई, पहले तुम्हारी देह से एक और ही महक आती थी, सहज मर्दानी महक, जो ज्यादा अच्छी लगती थी। देवदत्त आश्चर्य से, लेकिन मैं तो बचपन से ही चंदन का तेल लगा रहा हूँ। पद्मिनी, वह बात नहीं, लेकिन काली के मंदिर से लौटने के बाद तुम्हारी देह की ऐसी मर्दानी महक होती थी। देवदत्त, यानी वह कपिल की बिना धुली देह की, पसीने की महक, अविश्वास से, वह तुम्हें अच्छी लगती थी? पद्मिनी क्षण भर अस्तब्धता के बाद बात टाल कर, जाने दो, चलो झील चलें, अब देर मत करो। दोनों जाते हैं, थोड़ी देर विराम, फिर गुड़िया बोलने लगती हैं। गुड़िया एक, चलो घर चल घर तो अच्छा ही है गुड़िया दो। हाँ डर था जाने कैसा मिले, हमारा भाग्य अच्छा है गुड़िया। भाग्य क्या, हम जैसी गुड़ियों के लिए तो महल होना चाहिए था गुड़िया दो। और मन बहलाने के लिए राजकुमार सचमुच का राजकुमार गुड़िया एक। मेले में बच्चों की ललचाई आंखें हमें देखकर कैसी चमक उठती थी गुड़िया दो। बच्चों की माओ के मुंह में पानी भर आता था गुड़िया एक। लेकिन ए पाजी पिता लोग नाक भौं सिकोड़ कर कहते थे महंगी हैं, बहुत महंगी हैं गुड़िया दो। महंगी, हम जैसी गुड़िया कौड़ियों में मिलती हैं गुड़िया एक। हम तो राजकुमारों के लिए ही बनी हैं गुड़िया दो। हर दिन प्यार से झाड़ा पोंछा जाए गुड़िया एक। रेशमी कपड़े पहनाए जाए गुड़िया दो। हर महीने नए कपड़े गुड़िया एक। धीरे से उठाएं, प्यार करें और सोने की वेदी पर रखें गुड़िया दो। गुड़िया वाला समझदार होता तो हमें कभी न बेचता गुड़िया एक। बेचने से पहले इस जंगली के हाथ तो देख लेता गुड़िया दो। हाँ री, बड़े लठ जैसे हैं गुड़िया एक। ऐसी कठोर पकड़ की अब भी मेरी बांह दुख रही है गुड़िया दो। छी छी, कहाँ हम और कहाँ यह जंगली। देवदत्त दौड़ता हुआ आता है और गुड़ियों को उठाकर हवा में उछालता हुआ प्यार करता है। देवदत्त, अरे गुड़ियों लो तुम्हारा राजकुमार आ गया आ गया। गुड़िया पीड़ा से, हाय राम बिल्कुल उजड्ड है गुड़िया दो। जंगली एकदम जंगली। देवदत्त भागवत से, भागवत जी यह मिठाई लीजिए, हमारे यहाँ आपका न्योता है। भागवत, क्यों भैया क्या बात हुई। देवदत्त, आप नहीं जानते मेरा बेटा हुआ है हीरा सा मुन्ना, गुलाब के फूल सा बेटा। होए होए, लेजिम की लय पर डांडी नाचता हुआ चला जाता है थोड़ी देर नीरवता गुड़िया एक। वह सनीचर अभी तक सोया है गुड़िया दो। ऐसा ही लगता है राम राम जाने जान खाए लेता है गुड़िया एक। दिन भर रोना 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 गुड़िया दो। घड़ी घड़ी गंदा करते रहना गुड़िया एक। कैसी दुर्गत है हमारी, भगवान का भी भरोसा नहीं रहा गुड़िया दो। भगवान क्या, मनुष्य का ही कौन सा भरोसा रहा गुड़िया एक। गलती हमारी ही है, हमें समझना चाहिए था कि यह स्त्री हर रात बच्चे का सपना देखती है गुड़िया दो। हमें यह भी नहीं सूझा कि दिनों दिन उसका पेट फूलता जा रहा है गुड़िया एक। हाँ हमें भी तो हमें तभी समझ लेना चाहिए था गुड़िया दो, पर इसमें हमारा भी क्या दोष। हम कैसे जानते कि उसने अपने पेट में इतना बड़ा भेद छिपा रखा है गुड़िया एक। कैसी फूलती जाती थी जैसे किसी ने हवा भर दी हो गुड़िया दो। कितनी बदसूरत लगती थी गुड़िया एक, पर पतिराज को नहीं गुड़िया दो। किलकारी भरकर अकेले में पत्नी के पेट पर हाथ फेर कर कहता, देख देख राजकुमार पैर चला रहा है गुड़िया एक। गंभीरता से, हमें तभी होशियार हो जाना चाहिए था गुड़िया दो उदास होकर। हाँ तभी गुड़िया एक, फिर टपक पड़ा यह पिशाच गुड़िया दो। मांस का लोंदा गुड़िया एक, न आँख का पता न नाक का गुड़िया दो। इस पर भी सारा लाड प्यार उसी को गुड़िया एक। छी गुड़िया दो आग। पद्मिनी देवदत्त आते हैं, गोद में बच्चा है। दोनों बच्चे के बारे में बातें करते हैं, प्यार करते हैं, हंसते हैं और चले जाते हैं। सारा संवाद हाव भाव से ही प्रकट होना चाहिए। बच्चा लकड़ी का गुड्डा भी हो सकता है गुड़िया एक। मेरे कंधे पर मकड़ी ने जाला बुना है गुड़िया दो। कल एक चूहे ने मेरी उंगली कुतर ली गुड़िया एक। परसों एक तिलचट्टे ने मेरी आंख चट कर ली गुड़िया दो। 6 महीने हुए किसी ने हमें छुआ तक नहीं गुड़िया एक। 6 महीने से किसी ने धूल तक नहीं हटाई गुड़िया दो। 6 महीने में ही हमारा यह हाल, बरस बाद जाने क्या होगा। पद्मिनी और देवदत्त प्रवेश करते हैं।